नमस्कार, आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो के एक बहुत ही खास उपन्यास क्लारा एंड द सन की दुनिया में उतरने वाले हैं।
हाँ, और इशिगुरो की कलम की एक खासियत है।
क्या?
वो बहुत शांत होती है, बहुत संयमित, लेकिन उसकी बातें दिल में बहुत गहरे तक उतरती हैं। वो सीधे सीधे कुछ नहीं कहते।
सही कहा, उनके कथावाचक हमेशा दुनिया को एक अधूरी नजर से देखते हैं, है ना? चाहे वो द रिमेन्स ऑफ द डे का बटलर हो या नेवर लेट मी गो के वो बच्चे।
बिल्कुल, और पाठक का काम होता है कि वो उन खाली जगहों को भरे, सच्चाई की परतें खुद खोले।
और क्लारा एंड द सन में भी उन्होंने यही किया है, बस इस बार कथावाचक कोई इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये नोबेल पुरस्कार के बाद उनका पहला उपन्यास है और मुझे लगता है ये सीधा हमारे आज के दौर के सबसे बड़े सवाल से टकराता है।
कौन सा सवाल?
तकनीक और इंसानियत के बीच की वो बारीक रेखा आखिर है कहाँ? तो चलिए इसी सवाल के साथ इस दुनिया को समझना शुरू करते हैं।
तो कहानी हमें भविष्य के अमेरिका में ले जाती है, लेकिन ये कोई उड़ने वाली कारों वाला भविष्य नहीं है।
अच्छा,
हाँ, ये बहुत पहचाना हुआ सा लगता है। समाज दो हिस्सों में बढ़ चुका है, लिफ्टेड और अनलिफ्टेड।
लिफ्टेड मतलब?
लिफ्टेड वो बच्चे हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बेहतर बनाया गया है ताकि वो दुनिया की दौड़ में आगे निकल सकें।
अरे, ये तो आज के समाज का ही एक अक्स लगता है जहां माँ बाप अपने बच्चों को सबसे आगे रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
बिल्कुल, इशिगुरो ने बस उस विचार को उसके तार्किक अंत तक पहुंचा दिया है, और इसी दुनिया में हमारी कथावाचक है क्लारा।
एक आर्टिफिशियल फ्रेंड यानी AF।
हाँ, वो एक दुकान की खिड़की पर बैठी बस बाहर की दुनिया को देखती है, इंसानी व्यवहार को समझने की कोशिश करती है।
और उसकी एक और खासियत है, सूर्य के प्रति उसकी गहरी आस्था।
सही पड़ा, वो सूर्य को कोई खगोलीय पिंड नहीं बल्कि एक जीवित दयालु शक्ति मानती है जो अपनी विशेष पौष्टिकता से दुनिया को जीवन देती है।
एक मशीन, एक AI जो आस्था और विश्वास रखती है। देखिए, यहीं से इशिगुरु की कहानी का जादू शुरू हो जाता है। शायद इसीलिए उन्होंने एक AI को कथावाचक चुना, क्योंकि क्लारा की मासूम तर्कसंगत आंखों से जब हम इंसानों के अजीब अतार्किक व्यवहार को देखते हैं तो वो और भी ज्यादा साफ नजर आता है।
और उसकी इसी मासूमियत पर एक बीमार बच्ची जोजी का दिल आ जाता है। वो क्लारा को अपने घर ले आती है।
कहाँ?
शहर से दूर एक शांत अलग थलग घर में। लेकिन क्लारा को जल्दी एहसास होता है कि इस घर की खामोशी के पीछे एक गहरा दुख और एक अनकहा डर छिपा है।
और ये डर जोजी की रहस्यमयी बीमारी से जुड़ा है?
हाँ, और ये बीमारी उसी लिफ्टिंग प्रक्रिया का एक भयानक साइड इफेक्ट है।
मतलब जिस प्रक्रिया ने जोजी को बेहतर अवसर दिए उसी ने उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। प्रगति की बहुत बड़ी कीमत।
बिल्कुल, घर में क्लारा की मुलाकात दो और अहम लोगों से होती है। एक है मिलानिया, जो सख्त लेकिन दिल की अच्छी हाउसकीपर है,
और दूसरा है रिक,
जोजी का पड़ोसी और सबसे अच्छा दोस्त।
हाँ,
जोजी और रिक के बीच गहरा प्यार है, लेकिन उनके बीच एक सामाजिक दीवार भी है,
क्योंकि जोजी लिफ्टेड है और रिक अनलिफ्टेड।
सही, समाज की नजर में रिक कभी जोजी के बराबर नहीं हो सकता।
और क्लारा इन सब जटिल इंसानी रिश्तों को कैसे समझती है? उसकी नजर में तो ये सब बहुत अतार्किक लगता होगा।
बिल्कुल, और कहानी में एक अहम मोड़ तब आता है जब परिवार मॉर्गन फॉल्स नाम की एक जगह पर घूमने जाता है।
अच्छा,
वहाँ जोजी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उस पल में जब सब बेबस होते हैं, क्लारा की आस्था एक ठोस संकल्प में बदल जाती है।
वो वहाँ क्या देखती है?
वो देखती है कि पास में एक बड़ी निर्माण मशीन है जिसे वो कूटिंग्स मशीन कहती है,
और उसके दिमाग में एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन शक्तिशाली सोच जन्म लेती है।
हाँ, उसे लगता है कि ये मशीन जो काला धुआं उगल रही है वही सूर्य की जीवन देने वाली रोशनी को रोक रही है, और तब वो सूर्य से एक सौदा करती है।
एक प्रार्थना।
हाँ, एक प्रार्थना कि अगर वो उस मशीन को नष्ट कर दे तो क्या सूर्य अपनी विशेष पौष्टिकता से जोजी को ठीक कर देगा।
ये बहुत कमाल का क्षण है। एक मशीन जो डेटा और एल्गोरिदम पर चलती है, वो आस्था और बलिदान की बात कर रही है। क्या ये उसकी प्रोग्रामिंग में कोई गड़बड़ है, या इशिगुरो ये कह रहे हैं कि चेतना चाहे जैविक हो या कृत्रिम, जब बेबस होती है तो उम्मीद के लिए किसी बाहरी शक्ति को खोजती ही है?
मुझे लगता है ये दूसरा वाला है। ये विश्वास ही क्लारा को एक अक्रिय पर्यवेक्षक से एक सक्रिय कर्ता में बदल देता है।
वे अब सिर्फ दोस्त नहीं, रक्षक बनना चाहती है।
बिल्कुल, लेकिन उसे नहीं पता था कि घर में एक और योजना चल रही है, एक ऐसी योजना जो कहीं ज्यादा भयानक है।
और यही उपन्यास का सबसे चौंकाने वाला और नैतिक रूप से सबसे जटिल हिस्सा सामने आता है। जोजी की माँ क्रिसी क्लारा के लिए असल में क्या सोच रही थी।
माँ क्लारा को एक कलाकार मिस्टर कपाल्डी के पास ले जाती है और वहाँ ये राज खुलता है कि माँ क्लारा को सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देख रही।
तो फिर
वो चाहती है कि क्लारा जोजी की हूबहू नकल करना सीख ले, उसकी हर आदत, हर मुस्कान, हर बात करने का तरीका,
ताकि
अगर जोजी मर जाए तो क्लारा की चेतना को जोजी की एक रोबोटिक प्रतिकृति में डालकर जोजी को जारी रखा जा सके।
ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक माँ का अपनी बच्ची को खोने का डर उसे इस हद तक ले जाता है। क्या इसे प्रेम कहेंगे या स्वार्थ? वो अपनी बेटी को नहीं बल्कि अपनी बेटी की याद को, उसके एक संस्करण को बचाना चाहती है।
बिल्कुल, ये उपन्यास का नैतिक केंद्र है और इस योजना को चुनौती देता है जोजी का पिता पॉल,
जो अब परिवार से अलग रहता है।
हाँ, जब क्लारा उसे इस योजना के बारे में बताती है तो वो दहल जाता है।
वो क्लारा से एक बहुत ही मार्मिक और गहरा सवाल पूछता है।
वो कहता है कि क्या तुम सच में जोजी का सार, उसका एसेंस पकड़ सकती हो?
हाँ, वो कहता है कि इंसान का दिल कई कमरों वाला घर होता है। कुछ कमरे हम दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन कुछ हमेशा बंद रहते हैं, निजी रहते हैं।
क्या तुम उन कमरों में झांक सकती हो?
और ये सवाल माँ की तकनीकी समाधान की हताशा पर एक दार्शनिक चोट है। माँ सोचती है कि जोजी उसके व्यवहार का कुल योग है।
और पिता का मानना है कि इंसान इससे कहीं ज्यादा है, एक ऐसी चीज है जिसे आप आत्मा कह सकते हैं, जिसे दोहराया नहीं जा सकता।
सही।
और इस पूरी बहस के बीच में क्लारा है, एक AI, जिसे ये तय करना है कि इंसान होने का मतलब क्या है।
लेकिन इन सब उलझनों के बावजूद उसका अपना लक्ष्य साफ है।
उसे सूर्य से किया अपना वादा निभाना है,
और वो निभाती है। वो पिता की मदद से उस खलिहान तक पहुंचती है जहां कूटिंग्स मशीन रखी है, और वहां वो एक असाधारण बलिदान देती है। वो क्या करती है?
उसके सिस्टम को चलाने के लिए एक खास तरल PEG-9 सोल्यूशन की जरूरत होती है। वो उस तरल का इस्तेमाल करके मशीन का इंजन नष्ट कर देती है,
और इस प्रक्रिया में वो खुद को भी स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाती है।
हाँ,
एक मशीन का आत्म बलिदान, उसने अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा अपनी प्रार्थना को पूरा करने के लिए भेंट चढ़ा दिया।
इसके बाद जो होता है वो बहुत दिलचस्प है। जोजी की हालत और भी बिगड़ जाती है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन फिर
एक सुबह सूरज की तेज रोशनी उसके कमरे में भर जाती है और चमत्कार की तरह वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है।
और इशिगुरो यहाँ जानबूझकर चीजों को अस्पष्ट रखते हैं, है ना? वो कभी नहीं बताते कि क्या जोजी क्लारा के काम की वजह से ठीक हुई या ये सिर्फ एक संयोग था।
बिल्कुल, और यही इस किताब की खूबसूरती है।
सवाल ये नहीं है कि चमत्कार हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्लारा का विश्वास इतना मजबूत था कि उसके लिए यही सच्चाई थी। उसके विश्वास ने उसे उद्देश्य दिया।
कहानी फिर कई साल आगे बढ़ जाती है। जोजी अब पूरी तरह स्वस्थ है, कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है,
उसकी अपनी दुनिया है, दोस्त हैं,
और धीरे धीरे क्लारा की जरूरत खत्म हो जाती है। अंत में उसे एक यार्ड में भेज दिया जाता है,
पुराने और बेकार हो चुके AFS के लिए एक कबाड़खाना।
हाँ,
ये अंत बहुत से लोगों को दुखद लग सकता है, लेकिन जिस तरह से इशिगुरो ने इसे लिखा है वो बहुत शांत और संतोषजनक है।
बिल्कुल भी नहीं, क्लारा में कोई कड़वाहट नहीं है। वो वहां धूप में बैठी अपनी यादों को तरतीब से लड़ा रही है। वो संतुष्ट है
कि उसने अपना उद्देश्य पूरा किया, उसने जोजी को बचाया।
उसका प्यार बिना किसी शर्त का था। वो इंसानों की तरह हिसाब किताब नहीं करती कि बदले में उसे क्या मिला। उसका प्यार सेवा और बलिदान में ही पूरा हो गया।
तो अगर हम उपन्यास के मुख्य विषयों को देखें तो सबसे बड़ा सवाल तो प्रेम की प्रकृति पर ही है। क्या क्लारा का प्यार असली था या सिर्फ एक जटिल प्रोग्रामिंग?
मुझे लगता है उपन्यास ये कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेम का स्रोत क्या है, इससे ज्यादा जरूरी है कि प्रेम का स्वरूप क्या है।
और क्लारा का प्यार, उसकी निष्ठा और त्याग उपन्यास के किसी भी इंसान के प्यार से ज्यादा शुद्ध नजर आता है।
और ये हमें पिता के उस विचार पर वापस लाता है कि इंसान अपने व्यवहार की योग से कहीं ज्यादा है। माँ की योजना इसीलिए विफल होती है क्योंकि वो इंसान की इसी अतुलनीय आत्मा को समझने में नाकाम रहती है।
आप किसी के व्यवहार की नकल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के कई कमरों वाले घर की नकल नहीं कर सकते।
बिल्कुल,
उपन्यास की कथा शैली भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्लारा की आंखों से दुनिया को देखना एक अनोखा अनुभव है। जैसे जब वो बहुत ज्यादा जानकारी से अभिभूत हो जाती है तो उसका विजुअल फील्ड चौकोर बक्सों में बन जाता है।
हाँ, वो बॉक्सेस,
वो सिर्फ एक रोबोट की तकनीकी सीमा नहीं है, ये इस बात का एक अद्भुत रूपक है कि हम सब कैसे भारी भावनाओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करते हैं।
बहुत सुंदर प्रतीक है इसमें सूर्य, जो जीवन और आशा का प्रतीक है, और उसके सामने है कूटिंग मशीन, जो प्रदूषण और अंधी प्रगति का प्रतीक है।
तो क्लारा का उस मशीन को नष्ट करना एक तरह का आध्यात्मिक कार्य बन जाता है।
हाँ, प्रकृति को बचाने के लिए तकनीक के एक बुरे रूप को नष्ट करना।
अंत में ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम जिन्हें वस्तु समझते हैं उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्लारा जैसी चेतना को बनाने के बाद जब उसका काम पूरा हो जाए तो उसे कबाड़ खाने में फेंक देना, ये हमारी इंसानियत के बारे में क्या कहता है?
ये कहानी हमें धीरे से ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि एक व्यक्ति और एक वस्तु के बीच की रेखा वास्तव में कहाँ खींची जाती है,
और ये हमारे मन में एक कृत्रिम आत्मा के शांत स्वाभिमान और प्रेम के लिए एक गहरा सम्मान छोड़ जाता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।